द्वितीय भाग आठ धम्म प्रवचन। प्रवचन एक, वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। आदरणीय वेबू सयादा ने कहा, आपने नैतिक आचरण अर्थात शील, पाली में सील, के पालन का निर्णय लिया है। अब जबकि आपने उत्कृष्ट नैतिकता अर्थात सील पारमी में अपने आप को परिपूर्ण करने का निश्चय किया है, तो इसे इसकी पराकाष्ठा तक पूरा कीजिए। केवल जब आप सील को उसकी पराकाष्ठा तक परिपूर्ण करेंगे, तभी आपकी सारी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। आप वर्तमान में सुखी होंगे तथा भविष्य में भी। मात्र बुद्ध की शिक्षा ही आपको वर्तमान में तथा शेष संसार में वास्तविक सुख प्रदान कर सकती है। बुद्ध की शिक्षा मूल धर्म ग्रंथों के तीन संग्रहों यानि त्रिपिटक में प्रतिष्ठापित है। ये त्रिपिटक अति व्यापक हैं। यदि हम त्रिपिटक का सार निचोड़ें, तो हमें जागृति के 37 कारक अर्थात बोधि पक्खिया धम्मा मिलेंगे। जागृति के 37 कारकों का सारांश आर्य अष्टांगिक मार्ग, पाली में मग्गंग, के 8 घटक हैं। अष्टांगिक आर्य मार्ग का सारांश त्रिविध प्रशिक्षण, पाली में सिक्खा है, अर्थात उच्च नैतिकता, उच्च सती या जागरूकता तथा उच्च विवेक, पाली में अधिशील, अधिचित्त तथा अधिपैया। त्रिविध प्रशिक्षण का सार अद्वितीय सार्वभौमिक विधान एको धम्मो है। यहाँ हम आदरणीय वेबू सयादा ने संसार की जो बात कही, उसका अर्थ जन्म एवं मृत्यु के भवचक्र से है, जिसकी आदि अज्ञेय है, किंतु जो निर्वाण, पाली में निब्बान, की प्राप्ति के साथ समाप्त होता है। थेरवादी यानि स्थविरवादी त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, सुत्तांत पिटक एवं अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटक आते हैं। बोधि पक्खिया धम्मों के अंतर्गत सतिपट्ठान, सम्मापधान, इद्धिपाद, इंद्रिय बल, बोध्यांग एवं मार्गांग आते हैं। इनके विषय में विस्तृत जानकारी के लिए ज्ञान तिलोक की बीपीएस कैंडी द्वारा 1976 में प्रकाशित बुद्धिस्ट डिक्शनरी देख सकते हैं। अष्टांगिक आर्य मार्ग में समुचित वाणी, समुचित कार्य, समुचित आजीविका, समुचित प्रयास, समुचित सती, समुचित समाधि, समुचित दृष्टि एवं समुचित संकल्प आते हैं। अधिचित्त से यहाँ तात्पर्य केंद्रित मन अर्थात समाधि से है। आगे उन्होंने कहा, यदि आपका शरीर एवं मन नियंत्रण में है, जैसा कि इस समय है, तो शारीरिक या मौखिक कार्यों में कोई कर्कशता नहीं हो सकती। यही अधिशील या उत्तम नैतिकता है। यदि अधिशील सशक्त हो, तो मन सुस्थिर एवं शांत हो जाता है तथा अपनी कठोरता खो देता है। इसे अधिचित्त कहते हैं। यदि अधिचित्त यानी समाधि सशक्त हो जाती है तथा चित्त एक लंबी अवधि तक एकाग्र रहता है, तो आपको अनुभव होगा कि भौतिक पदार्थ के अवयव यानी कलाप पल भर में अरबों अरबों बार उत्पन्न एवं विनष्ट होते रहते हैं। जब मन भौतिक पदार्थ को जानता है तो वह यह जानता है कि आँख की पलक की एक झपक में भौतिक पदार्थ अरबों अरबों बार बनता और विनष्ट होता है। उत्पन्न होने एवं विघटन का यह ज्ञान अधिपैया कहलाता है। इस पुस्तक के प्रथम भाग में पाली पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत कलाप शब्द की भी व्याख्या की गई है। आदरणीय स्यादा ने आगे कहा, जब भी हम श्वास लेते या छोड़ते हैं तो आने वाली एवं बाहर जाने वाली श्वास नासिका रंध्रों में या उनके निकट स्पर्श करती है। काय प्रसाद वायु के स्पर्श को पंजीकृत करती है। यहाँ काय प्रसाद से उनका तात्पर्य वह स्पष्ट संवेदनशीलता है जो छवों ज्ञानेंद्रियों में निहित होती है तथा जो स्पर्श दृष्टि ध्वनि तरंग गंध स्वाद एवं विचारों को स्पष्ट रूप से पंजीकृत करती है। उन्होंने आगे कहा, इस प्रक्रिया में स्पर्श करने वाले तत्व पदार्थ हैं तथा स्पर्श को जानने वाला तत्व मन है। अतः मन एवं पदार्थ के विषय में चारों ओर जाकर दूसरों से मत पूछिए, अपने श्वास का निरीक्षण कीजिए तो आपको स्वयं उनके बारे में पता चल जाएगा। जब वायु अंदर आती है तो वह स्पर्श करेगी, जब वायु बाहर जाती है तो वह स्पर्श करेगी। यदि आप इस स्पर्श को निरंतर जानने लगते हैं तो लोभ द्वेष तथा मोह यानि भ्रम को उदय होने का अवसर ही नहीं मिलता और लोभ द्वेष एवं भ्रम की अग्नि बुझने लगती है। हवा का स्पर्श होने के पहले ही उसके स्पर्श को आप नहीं जान सकते, उसके चले जाने के बाद भी उसे नहीं जान सकते। जब हवा भीतर आती है या बाहर जाती है तो केवल तभी आप स्पर्श की अनुभूति कर सकते हैं। इसे ही हम वर्तमान क्षण कहते हैं। जब हम वायु का स्पर्श अनुभव करते हैं तो हमें पता होता है कि वहाँ केवल मन और पदार्थ हैं। हम स्वयं जानते हैं कि वहाँ कोई मैं, कोई अन्य व्यक्ति, कोई पुरुष तथा स्त्री नहीं है तथा हमें स्वयं बोध होता है कि जो बुद्ध ने कहा वह वास्तव में सत्य है। हमें दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब हम आश्वास तथा प्रश्वास को जानते हैं तब वहाँ मैं, अत्ता या आत्मा या अहम नहीं होता। जब हम यह जानते हैं तो हमारी दृष्टि शुद्ध होती है। यही सही दृष्टिकोण है। उस क्षण में हम यह जानते हैं कि नाम अर्थात मन एवं रूप अर्थात पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि मन और पदार्थ दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। यदि हम इस प्रकार नाम व रूप के बीच भेद करना जान जाते हैं तो मन एवं पदार्थ के बीच भेद करने की क्षमता अर्थात नाम रूप परिच्छेद ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। जब भी वायु का स्पर्श होता है यदि हम उसे जानते हैं तब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तथा हमें उसका लाभ मिलता है। यह मत सोचिए कि इस प्रकार एक क्षण में भी जो लाभ मिलता है वह कम है। यह मत सोचिए कि जो लोग ध्यान लगाते हैं उन्हें उनकी साधना से कोई लाभ नहीं मिलता। अब जबकि आपने एक अच्छे लोक अर्थात मनुष्य लोक में जन्म लिया है तथा आप बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आए हैं तो आप महान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। खाने और पीने की चिंता न करें किंतु जितना संभव हो सके उतना प्रयास करें। फिर फिर सयादा ने पूछा, तो हम यहाँ बता दें कि बर्मा में सयादा एक उपाधि है जो वरिष्ठ भिक्षुओं को दी जाती है। सया का अर्थ शिक्षक होता है तथा बुद्ध को, भिक्षुओं को एवं राज परिवार को आदर प्रदर्शित करने के लिए सामान्य प्रत्यय द्वा आरक्षित है। प्रारंभ में राजा अपने धार्मिक शिक्षकों को सयादा की उपाधि से सम्मानित करते थे। आज इसे और अधिक व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। वेबू सयादा का अर्थ वेबू के महान शिक्षक से है। वे वेबू घाटी में रहते थे और उनका नाम आदरणीय कुमार था। तो आदरणीय सयादा ने पूछा, क्या यह वर्तमान समय शुभ नहीं है? एक शिष्य ने कहा, हाँ भंते है। सयादा बोले, हाँ वास्तव में जिस प्रकार अतीत में महान व्यक्तियों ने स्वयं बुद्ध से निर्देश प्राप्त किए थे, उसी प्रकार वे उदात्त लोग जो खुले मस्तिष्क से बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा उनका अभ्यास करते हैं, उसी तरह क्या वे अपनी निर्वाण की आकांक्षा पूरी नहीं कर सकते? हाँ भंते, वे कर सकते हैं। तो बुद्ध का शासन अर्थात बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध धर्म कितनी अवधि तक रहता है? 5000 वर्षों तक बनते। और अब मुझे बताइए, इन 5000 वर्षों में से कितने बीत गए हैं? भंते, उसकी आधी अवधि बीत गई है। तो अभी कितनी शेष है? लगभग 2500 वर्ष बनते। आजकल मनुष्य के जीवन काल की अवधि कितनी है? यहां हम बता दें कि मान्यता के अनुसार नैतिकता पालन के आधार पर मनुष्य के जीवन काल की अवधि बदलती रहती है। यह असंख्य वर्षों से लेकर मात्र 10 वर्ष तक की हो सकती है। दीर्घ निकाय के तृतीय भाग में तथा आदरणीय लेडी सयादा की पुस्तक मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म में इसकी चर्चा की गई है। तो शिष्य ने उत्तर दिया, लगभग 100 वर्ष भंते। आपकी आयु क्या है? मैं 37 वर्ष का हूं भंते। तो अभी आपको कितने और वर्ष जीने के लिए बचा है? 63 वर्ष भंते। किंतु क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप उतनी लंबी अवधि तक जीवित रहेंगे? उसका तो मुझे पता नहीं भंते। आपको स्वयं पता नहीं कि आप कितने समय तक और जीने वाले हैं? नहीं भंते, यह निश्चित रूप से जान पाना संभव नहीं है। किंतु जैसे ही हम पैदा होते हैं, तभी हम सुनिश्चित हो जाते हैं कि हमें वृद्धावस्था, रोग एवं मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा। हाँ भंते, क्या हम बुढ़ापा, कष्ट एवं मृत्यु से अनुरोध कर सकते हैं कि वे कुछ समय के लिए रुक जाएं, कुछ समय के लिए दूर चले जाएं? नहीं भंते, नहीं, वे कभी आराम नहीं करते। क्या हम उनसे कह सकते हैं कि वे अपना काम करना बंद कर दें? नहीं भंते, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि यह निश्चित है कि हमें मरना पड़ेगा। हाँ भंते, यह निश्चित है कि हम सभी को मरना है। यह निश्चित है कि सभी को मरना है, तो जीवित रहने के विषय में क्या विचार है? भंते, हम यह निश्चित रूप से नहीं जानते कि जीने के लिए हमारे पास कितना और समय शेष है। सयादा ने बताया, जिस व्यक्ति का जीवन काल 30 वर्ष का है, उसकी 30 वर्ष बीतने पर मृत्यु हो जाती है। यदि आपका जीवन काल 40 या 50 वर्ष का है, तो आपकी मृत्यु आपके 40 या 50 वर्ष होने पर ही हो जाएगी। किसी के मृत हो जाने के बाद क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? नहीं बनते, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपके जीवन काल के जितने भी वर्ष बीत चुके हैं, वे बीत चुके हैं। आपने अभी तक क्या क्या उपलब्ध नहीं किया है? मग्गपद अर्थात मार्गपद एवं फल पद का आनंद अर्थात निर्वाण अभी उपलब्ध नहीं किया है। यहाँ निर्वाण का अर्थ है सभी दुखों का अंत एवं भवचक्र से मुक्ति। इस पुस्तक के प्रथम भाग में पाली पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत निर्वाण भी सम्मिलित है। स्यादा, हाँ, चूंकि आप मार्गपद एवं फलपद अभी तक अर्जित नहीं कर सके हैं, इस अर्थ में आप पराजित हुए हैं। जो वर्ष बीत चुके हैं, क्या आपने उसका अच्छा उपयोग किया है अथवा आपने अपना समय व्यर्थ में व्यतीत किया है? भंते, मैंने अपना समय व्यर्थ किया है। तो जो समय बचा है उसे व्यर्थ न जाने दें। यह समय आपके पास इसलिए है कि आप ऊर्जा के साथ निरंतर प्रयास कर सकें। यह निश्चित है कि आपकी मृत्यु होगी, किंतु यह निश्चित नहीं है कि आपको अभी कितना और जीवित रहना है। कुछ लोग बड़ी लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं। आदरणीय महाकाश्यप, पाली में महाकश्यप, तथा आदरणीय महाकात्यायन, पाली में महाकच्चायन या महाकच्चान, 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे। यहाँ हम बता दें कि महाकाश्यप बुद्ध के 80 मुख्य शिष्यों में से एक थे। चूंकि दोनों प्रमुख शिष्यों की बुद्ध से पहले ही मृत्यु हो गई थी, अतः बुद्ध के निधन के बाद महाकाश्यप सबसे वरिष्ठ भिक्षु थे। उन्होंने प्रथम संगीति का नेतृत्व किया था। महाकात्यायन भी बुद्ध के 80 मुख्य शिष्यों में से एक थे। बुद्ध के लघु प्रवचनों को पूर्ण रूप से समझाने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। तो सयादा ने कहा, कुछ लोग 80 वर्षों तक जीवित रहते हैं। उतने लंबे समय तक जीने में सक्षम होने के लिए जो आदर के पात्र हैं, हमें उन लोगों के प्रति आदरपूर्ण होना चाहिए तथा हमें अत्यंत विनम्र होना चाहिए। क्या आप अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? हम करते हैं बनते। क्या आप उन लोगों को प्रणाम करते हैं जो आपसे अधिक आयु के हैं अथवा आपसे उच्चतर पद वाले हैं? हाँ, हम उन लोगों को प्रणाम करते हैं जो हमसे अधिक आयु के हैं अथवा हमसे उच्चतर पद वाले हैं। भले ही कोई व्यक्ति केवल एक ही दिन बड़ा हो अथवा केवल आधा दिन ही बड़ा हो, तो भी हम उनको प्रणाम करते हैं। आप उन्हें कब प्रणाम करते हैं? रात में सोने से पहले हम बुद्ध को तथा उसी समय अपने से वरिष्ठ लोगों को भी प्रणाम करते हैं। अन्य अवसरों पर हम प्रणाम नहीं करते बनते। आप कहते हैं कि बुद्ध को प्रणाम करने के पश्चात आप अपने वरिष्ठों को प्रणाम करते हैं, किंतु क्या आप उन लोगों को सम्मान देते हैं जो आपके साथ रहते हैं तथा उन लोगों को जो आपके समवयस्क हैं? यदि मैं किसी रास्ते पर $1,000 के पुलिंदे जगह जगह रख दूं, इस आशय से कि उसे जो भी चाहे उठा ले, तो क्या आप उठा लेंगे? निसंदेह हम उठा लेंगे बनते। तथा यदि आपको एक और मिल जाए तो क्या आप उसे भी ले लेंगे? हाँ, हम अवश्य ले लेंगे बनते। तथा यदि आपको बैंक नोटों का तीसरा पुरंदा मिल जाए तो क्या आप उसे भी ले लेंगे? हाँ, अवश्य हम उसे भी ले लेंगे बनते। एक ले लेने के बाद क्या आप यह नहीं चाहेंगे कि दूसरे को भी एक मिले? हम ऐसा नहीं सोचेंगे बनते। मान लीजिए कि आप अपने एक मित्र के साथ हैं, तो यह सोचते हुए कि चलो इस वाले को न देखने का नाटक करता हूँ, आखिरकार मेरे पास पहले से ही एक है, क्या आप चाहेंगे कि उसे भी नोटों का एक बंडल मिल जाए? क्या आप उसे एक ले लेने देंगे अथवा उन सभी को ले लेंगे और उनके लिए दौड़ लगाएंगे? जो भी मिल सकता है मैं उसे ले लूँगा और उसके लिए भी दौड़ लगाऊंगा बनते। हाँ हाँ आप लोग बहुत अच्छे नहीं हैं। जब पैसे की बात आती है तो आप किसी और को देने में असमर्थ होते हैं, किंतु तब भी आप कहते हैं कि आप आदरपूर्ण एवं विनम्र हैं, केवल इसलिए कि आप सायंकाल में बुद्ध को नमन करते हैं। वह मुझसे श्रेष्ठतर क्यों है? क्या उसका ज्ञान मुझसे अधिक है? यदि आप ऐसे विचार अपने मन में रखते हैं तो आपका मन अभी भी अहंकार से भरा है। यदि आप अहंकार रहित होकर अपने माता पिता को, शिक्षकों को, वरिष्ठों को, विवेकियों को तथा उच्च पदाधिकारियों को सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं तो आप 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहेंगे। यदि आप इस तरह के व्यक्तियों का आदर करते हैं तो क्या आपको केवल $1,000 ही मिलेगा? क्या आपको केवल धन ही मिलेगा? धन मात्र से वह और अधिक होगा बनते। वास्तव में हाँ, तथा यद्यपि आप यह जानते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, तथा आप किसी और को $1,000 नहीं देंगे अपितु दौड़कर स्वयं के लिए ले लेंगे। जब बुद्ध ने अपनी करुणा के कारण धम्म की शिक्षा दी थी तो क्या प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ गया था? नहीं बनते, प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सका था। ऐसा क्यों? भन्ते, कुछ लोगों ने बुद्ध की बात सुनी नहीं। यदि आप बुद्ध की शिक्षा को स्वयं अपनाएं, केवल तभी आपको सम्यक संबोधि या सम्यक बुद्धत्व, प्रत्येक बोधि या प्रत्येक बुद्धत्व, अग्रश्रावक बोधि अर्थात अग्रश्रावक बोधि या प्रमुख विशेषत्व, महाश्रावक बोधि अर्थात महाश्रावक बोधि या महाशिष्यत्व, पकतिसावत बोधि अर्थात अर्हत्व प्राप्त हो सकता है। यदि आप जागृति के इन रूपों में से किसी को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से आप अभी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वह आनंद जो आपके साथ भविष्य में भी रहेगा। एक धान का बीज अंकुरित होने में कितना समय लगता है? केवल रात भर बनते। इसे अंकुरित होने में केवल एक दिन लगता है। तो यदि आप बीज को, निश्चित रूप से एक अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को अंकुरण के बाद रख दें और रोपे नहीं तो क्या वह बढ़ेगा? नहीं बनते, ऐसा नहीं होगा। यद्यपि आपके पास एक अच्छी गुणवत्ता वाला बीज है, तथापि यदि आप उसे रोपेंगे नहीं तो वह विकसित नहीं होगा। बुद्ध की शिक्षा के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। केवल तभी आप उन्हें समझ पाएंगे जब आप उन्हें स्वीकार करेंगे। यदि आप मन एवं पदार्थ की उत्पत्ति की जागरूकता के साथ रहना सीखते हैं तो आप क्या उपलब्ध करते हैं? इस जागरूकता को विद्या, पाली में विद्या कहते हैं बनते। यदि कोई व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा से रहित होकर रहता है तो आप उसे क्या कहते हैं? वह अविद्या, अज्ञान है बनते। यदि आप अपना समूचा जीवन विद्या यानी बुद्ध धम्म की समझ के साथ व्यतीत करते हैं तो आप मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे? किसी अच्छे लोक के अस्तित्व में बनते। अज्ञान से भरे किसी जीवन के पश्चात क्या होगा? वह व्यक्ति अधोलोकों में जाएगा बनते। अच्छा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति, लगभग 70 वर्ष का एक व्यक्ति बुद्ध को नमन करता है। ऐसा करते समय वह धम्म पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, किंतु अपने मन को इधर उधर भटकने देता है। यदि वह व्यक्ति उसी क्षण मृत हो जाता है तो उसका पुनर्जन्म कहाँ होगा? वह अपाय लोकों यानि अधोलोकों में जाएगा बनते। क्या वास्तव में? उत्तर देने के पहले आप ध्यान से सोचिए। वह बुद्ध को नमन कर रहा है तथा ध्यान लगा रहा है, अतः यदि वह उस पल मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह कहाँ जाएगा? वह अधोलोकों में जाएगा बनते। किंतु क्यों? क्योंकि उसका ध्यान इधर उधर चारों ओर भटक रहा है बनते। हाँ, अज्ञानता में रहने वाले व्यक्ति के मन में कैसे गुण उत्पन्न हो रहे होते हैं? वे लोभ, द्वेष, मोह या भ्रम होते हैं बनते। लोभ क्या होता है? लोभ कुछ चाहना है बनते। लोभ के अंतर्गत कोई पसंद, किसी प्रकार का आकर्षण, किसी भी प्रकार की अभिलाषा सम्मिलित है। जिस व्यक्ति की मृत्यु मन में किसी इच्छा या किसी अभिलाषा के साथ होती है, तो उसका पुनर्जन्म एक प्रेत के रूप में होता है। किंतु द्वेष, पाली में दोष, क्या होता है? दोष शत्रुता है बनते। हाँ, दोष ही आपके कलह का कारण है। आप जो चाहते हैं वह नहीं मिलता, तथा जो मिलता है वह आप नहीं चाहते। इसके कारण दोष उदय होता है। अरुचि या घृणा ही दोष है। यदि आप अपने मन में द्वेष के साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो आप नरक में पुनर्जन्म लेते हैं। उदारता, नैतिकता तथा ध्यान के अभ्यास से प्राप्त लाभ के विषय में अज्ञानता ही मोह है। यदि आप अपने मन में मोह या भ्रम के साथ मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो आपका पुनर्जन्म एक जंतु या जानवर के रूप में होगा। शरीर एवं मन की रचना न तो किसी ईश्वर ने, न किसी देवता ने, न तो किसी ब्रह्मा ने, अर्थात किसी ने भी नहीं की है। जैसा कि बुद्ध ने बताया है, ये सब प्रकृति के नियम अर्थात उत्पन्न होने तथा विघटन के नियम के अधीन है। यदि कोई व्यक्ति मन एवं पदार्थ के संज्ञान पर ध्यान देते हुए तथा उनके उदय एवं विघटन को जानते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह बुद्ध की शिक्षा के अनुसार किसी मनुष्य, देवता या ब्रह्मा के रूप में पुनर्जन्म लेगा। यदि कोई व्यक्ति जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा रहा हो, तो क्या उसे दूसरों से मार्ग पूछने की आवश्यकता है? नहीं बनते। क्या ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे से क्या मैं ज्ञान अथवा अज्ञानता के साथ रह रहा हूँ यह पूछने की आवश्यकता है? नहीं बनते, नहीं, वास्तव में नहीं। अतः जो पारमी आपने समूचे संसार अर्थात सभी जन्मों में संचित की है, उनको फलित होने के लिए अथक परिश्रम कीजिए, अपने प्रयास में सुदृढ़ होइए। जैसा कि अतीत में बुद्धिमान लोगों ने सीधे बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात किया था, वैसा ही कीजिए। उन्होंने निर्वाण के लिए काम किया, यह जानते हुए कि आप भी अस्तित्व के एक अनुकूल लोक में उत्पन्न हुए हैं, निर्वाण के 8 चरणों को प्राप्त करने हेतु काम करने से आपको कुछ भी नहीं रोक सकता। प्रबल प्रयास तथा दृढ़ता के साथ साधना करें, तथा यह सुनिश्चित करें कि थोड़ा सा भी समय व्यर्थ न हो। अन्य लोगों को भी साधना के लिए परामर्श दें तथा आग्रह करें। अपने हृदय में आनंद के साथ प्रयास करें, और जब आप सफल हों तो वास्तविक आनंद से ओतप्रोत हों।